ओम शांति। स्वाभिमुख कार्यशाला के अंतिम सत्र में हम मिल रहे हैं, जो उस कोर्स के सेशन है उस हिसाब से मैं कह रही हूं। कल आपने अपने आंतरिक जगत को पहचान लिया है कि हमारा आंतरिक जगत क्या है। बाह्य जगत, स्थूल जगत, भौतिक जगत को तो हम देख रहे हैं और जानते भी हैं। शरीर जो है वो इस स्थूल जगत का है, पांच तत्वों से बना है, और इस भौतिक जगत में बाह्य रूप से जो दिखाई दे रही है स्थूल रूप से, वो अनेक चीजें, पदार्थ, प्रकृति, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जगत वो है हमारा आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो अति सूक्ष्म है, मूल है। जैसे वृक्ष में आप देखते हैं कि आंतरिक रूप से तो वो एक बीज है, अति छोटा सा, उस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। लेकिन उनका बाह्य स्वरूप शरीर है, तो हम कह सकते हैं शरीर एक वृक्ष के समान है, आत्मा जो है वो बीज के समान है। आत्मा में कर्मों के जो हिसाब रिकॉर्ड हुए हैं, उस कर्मिक अकाउंट के अनुसार ये भौतिक शरीर और ये दुनियावी जीवन की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो हमारा आंतरिक जगत क्या है? जैसे हम कहते हैं कि भई हमें शांति बाहर नहीं ढूंढनी है, अपने भीतर जाना है। हम ये भी शब्द प्रयोग करते हैं कि अपनी अंतरात्मा से पूछ, मुझे अंदर का विकास करना है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रार्थना में है ना कि अंतर मम विकसित करो, उज्ज्वल करो, निर्मल करो। तो वो अंतर क्या है? वो है हमारा अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मस्वरूप। इसलिए मैं स्वयं ही वो आंतरिक जगत चैतन्य आत्मा। और हमारे इस आंतरिक जगत में क्या है वो भी कल आपने देखा कि हमारे आंतरिक चैतन्य स्वरूप में चार खजाने हैं। कौन से चार खजाने हैं? कौन से चार खजाने? हमारे चार खजाने हैं विचार, विचार शक्ति, विचार संपत्ति। कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो अपने एसेट्स को देखते हैं कि कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने साधन है, और फिर आप योजना बनाते। तो हमारे आंतरिक जगत में एक संपत्ति है विचार संपत्ति, संकल्पों का खजाना। दूसरा है शब्द संपत्ति, वाणी की शक्ति इंसान को ही प्राप्त है, सोचने की योग्यता, और सोचा हुआ शब्दों से अभिव्यक्त करने की योग्यता मनुष्यात्मा को ही मिली है। तीसरा है कर्म, कर्म संपत्ति, क्योंकि कर्म से ही हम प्राप्त करते हैं। जीवन में जो कुछ हम पाना चाहते हैं, सुख या दुख, कर्म के फल स्वरूप हम प्राप्त करते हैं, इसलिए कर्म वो मूल संपत्ति। और चौथा है समय संपत्ति, टाइम इज मनी हम कहते हैं, बल्कि मोर देन मनी, गवाया हुआ धन फिर से कमा सकते हैं, लेकिन गया हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय की वैल्यू कहते हैं। समय का एक चित्र किसी ने बनाया तो उसमें उसने आगे बाल रखे और पीछे गंजा था, तो उससे पूछा कि आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया, तो बोला मौका अवसर आते ही उसे पकड़ सकते हैं, हाथ से अवसर जाने के बाद पीछे से पकड़ने की कोई सुविधा नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि गया समय वापस नहीं आता है। हमारा समय किस में हम यूज करते हैं, समय का खर्च किन क्रियाओं से जुड़ा है, मुख्य ये तीन क्रियाएं हैं, या सोचने में हम समय खर्च करते हैं, या बोलने में समय खर्च करते हैं, या कर्म करने में समय व्यतीत करते हैं। इसलिए मन वचन कर्म ये तीन मुख्य क्रियाएं हैं, और समय रूपी फैक्टर इन तीन क्रियाओं से जुड़ा है, इसलिए ये चारों ही अमूल्य खजाने। अब हमें देखना है हमारा चारों ही खजाने जमा कितने हैं और खर्च कितने होते, और उस हिसाब से हमारा बैलेंस क्या बोल रहा है। लौकिक व्यापार में आप प्रतिदिन ये हिसाब निकालते हैं, रोज आप बिजनेस करते हैं, राष्ट्र को पोतामेल लिखते हैं, हिसाब बनाते हैं कि आज कितना कमाया, कितना खर्च हुआ और कितना जमा है। कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा जो जमा ना करता हो। आप में से कोई है जिसका बैंक बैलेंस ही ना हो, बैंक में खाता ही ना हो, ऐसे कोई है? हर एक का बैंक में खाता होता है, हर एक कुछ ना कुछ अपना बैलेंस बना के रखते हैं। क्यों हम बैलेंस जमा रखते हैं? क्योंकि ताकि समय पर हमें काम आए। जिनका बैंक बैलेंस बहुत है, वो अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, नुकसान हो जाए, वो घबराते नहीं है, अंदर से निश्चिंत है कि मेरा बहुत जमा है मेरे पास। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जमा जो किया है बैंक में उसमें से रोज विड्रोवल ही करता रहे और जमा ना करे, ऐसा कोई होगा? हर एक ये अटेंशन रखते हैं कि जितना हम निकालते हैं उतना हम डिपॉजिट भी करें, ताकि बैलेंस बना रहे, और वो बैलेंस हमें ब्लीसफुल रखता है। हमारे यहां बहुत अच्छा स्लोगन है कि बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है और हम ब्लीसफुल रहते हैं। जमा बरोबर है तो हम निश्चिंत है, हम जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। इसी प्रकार बाह्य जगत के पैसे के हिसाब किताब को तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक जगत में मन वचन कर्म के हिसाब किताब का क्या है? अगर वो बैलेंस नहीं है तो जीवन शांति से और चैन से नहीं जी सकते। जहां इम्बैलेंस होता है वहां ही गड़बड़ उत्पन्न होती है। तो हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में हम देखें कि इन चारों खजानों का हिसाब क्या है। और कल आपने इन चारों खजानों के जमा और खर्च के ऊपर सुना है कि जब हमारे विचार, शब्द और कर्म सकारात्मक हैं, शक्तिशाली हैं, तो वो जमा होते हैं। शुद्ध चिंतन मन को शक्ति देते हैं। जब आप व्यर्थ सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, उस समय संकल्पों की स्पीड आप नोट करिए, फास्ट हो जाती। जब आपको व्यर्थ चिंतन चलता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, तो विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती। मान लो बच्चा स्कूल गया है, रोज नियम से 5 बजे आ जाता है, आज 5:30 हुआ, 6 हुआ, अब तक घर नहीं लौटा, कौन से विचार आएंगे? नेगेटिव। और शांति नहीं रही, स्पीड से विचार आएंगे, कहां गया होगा, कुछ होना गया होगा, बताया भी नहीं, ऐसे ही खेलता रहता है, टाइम से आता नहीं, कितने विचार स्पीड से आ जाते। तो अति विचारों की उत्पत्ति मानसिक शक्ति को खर्च करते। जैसे शरीर से दौड़ना नेचुरल है कि चलना नेचुरल? चलना। अब मन से आप दौड़ेंगे, फास्ट सोचेंगे, अनेक इच्छाएं, अनेक विचार, तो क्या होगा? मन थकेगा, मन में ताकत नहीं रहेगी, कमजोर मन हलचल में ही रहेगा। इसलिए सोचते हम सभी हैं, संकल्पों का खजाना सबको मिला है, लेकिन कोई है जो वेस्ट करते हैं, कोई है जो शुभ सोचकर स्वयं को ही एम्पावर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सारा विश्व व्यक्ति के मन की रचना, और ये सही है। आप संसार में जितने भी चीजें पदार्थ देखते हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? विचार से। इस हॉल में अभी आप बैठे हैं, इसको बने हुए आज 9 साल हो गए, समझो 9 साल पहले ये हॉल कहां था? मैप पर, कागज के मैप पर, मैप के रूप में था। और उससे कुछ मास पूर्व कहां था? व्यक्ति के मन में। तो ये हॉल बेसिकली कहां से उत्पन्न हुआ? व्यक्ति के मन से। आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करना है, सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता रहेगी? योजना की। विधान है, स्थान है, जमीन है, सब कुछ है, पर पहले क्या चाहिए? सुंदर योजना। तो विचार, योजना, संकल्प, कल्पना, ये संकल्प के खजाने में आता है। इसलिए जितना नकारात्मक व्यर्थ में सोचते हैं वो माइनस होता है, जितना शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली सोचते हैं वो जमा होता है। वो चिंतन आत्मा को एम्पावर करता है, कमजोर नहीं करता। इसलिए हम कईयों को कहते हैं ना, बीती बातों को सोचते रहते हैं, कोई बन गई बात बार बार सोचते, तो हम क्या कहते, ज्यादा नहीं सोचो, दिमाग पर असर आएगी। कहते हैं ना, कमजोर हो जाएगा मन और ब्रेन दोनों। दूसरा है शब्द संपत्ति, वाणी की शक्ति, शब्दों का खजाना। यही वाणी वरदानी भी बन सकती है और यही वाणी तलवार का काम भी कर सकती है। हा? अगर मैं शुभ, हिम्मत भरने वाले, सुख देने वाले, उमंग उत्साह देने वाले, गुण के प्रशंसा के योग्य शब्द बोलती हूं, तो उस आत्मा में शक्ति आएंगी, हिम्मत आएंगी। और वहां ही मैं आलोचना करती हूं, कटु बोलती हूं, व्यंग में टॉन्ट मारती हूं, तो वही वाणी उस आत्मा को दुख देगी। तो जब मैंने शुभ बोला, उस आत्मा को एम्पावर किया, तो मुझे भी क्या मिलेगा, दुआ मिलेगी। इसलिए वाणी के लिए दो शब्द आप सभी जानते हैं कि दुआ और श्राप। कहते हैं ना, अगर वाणी को योग्य रीति से प्रयोग करते हैं तो वो शुभ वचन, आशीर्वचन, वरदान बन जाते हैं। और वही वाणी अगर मन में ईर्ष्या, वैर, द्वेष भाव से बोलते हैं तो वो श्राप बन जाती है, दूसरों को दुखी करने वाली और मुझे श्रापित करने वाली हो जाती। मेरे बोलने से और किसी को श्राप नहीं लगता है, क्योंकि हम दो बात जानते हैं कि जिन आत्माओं में शक्ति है, महान आत्माएं कभी श्राप देती नहीं। और गिरी हुई विकारों के वश तमो प्रधान आत्मा स्वार्थ श्राप देती है तो वो लगता नहीं। इसलिए कभी चिंता नहीं करना, श्राप देने वाला अपने शब्दों से खुद ही श्रापित होता है, इसलिए हमारा ही माइनस खाता होता है। अगर मैं इस मुख से किसी का अवगुण बोलती हूं, निंदा करती हूं, ग्लानी करती हूं, तो वो मेरी ही शक्ति को खर्च करते। अगर इस मुख से उपयोगी, काम की, कल्याण की, शुभ बात में करती हूं, तो वो मुझे ही और उस आत्मा को भी शक्ति दे। उस हिसाब से अब हम अपनी वाणी के खजाने को देखें कि रोज मेरा जमा कितना होता है। बोल बोल तो मैं करती हूं, कई इतना बोल बोल करते हैं कि अगर वो एक दिन घर में नहीं होंगे तो लगेगा कि आज फैक्ट्री बंद है, इतनी शांति होगी। कई इतना बोल बोल करते हैं जैसे बिगड़ा हुआ हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न बिगड़ जाता है तो क्या होता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। वो बोल बोल करते ही रहते। और तीसरा खजाना है कर्म, कर्म उसका हिसाब तो अनेक गुना बनता है। कर्म में आ गया माना वो तो एक ठोस पत्थर पर लकीर के समान हिसाब बन गए। इसलिए पुण्य कर्म, पाप कर्म का अटेंशन फिर भी हम सबको रहता है, लेकिन उसकी भी सही व्याख्या हमें जाननी चाहिए। और कल मॉर्निंग के सेशन में कर्म के ऊपर विशेष होगा कि कर्म हमारे सुकर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, सुखदायी कर्म हो, शुभ कर्म हो, और शुभ कर्मों से शुभ प्राप्ति हमें कर। और इसलिए हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, आप सभी व्यापारी भाई बहने अपने अकाउंट के चौपड़े में अपने दुकान के दोनों साइड जब शुरुआत करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो तीन बात करते हैं। दो शब्द कौन से लिखते हैं? शुभ और लाभ। और बीच में आप स्वस्तिक निकालते हैं। स्वस्तिक किस चीज का प्रतीक है? क्यों हम निकालते जानते नहीं है? वास्तव में स्वस्तिक को गणेश कहते हैं। गणेश वास्तव में बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है। विजडम के देवता उससे कहे जाते हैं। इसलिए स्वस्तिक स्वस्थिति के ज्ञान का प्रतीक है। इस विश्व चक्र के चार युगों में चार भाग करते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चार युगों का जो चक्र है, संसार चक्र, और चार भाग करके आप चारों ही भाग में क्या करते हैं? बिंदी लगाते। मीन्स चारों ही युगों में आत्मा का क्या स्टेज होता है? ये स्वस्तिक स्वस्थिति का पूर्ण ज्ञान, उसका प्रतीक है स्वस्तिक। तो सिर्फ वो चित्र नहीं बनाना, वो ज्ञान स्वस्थिति में स्थित होकर शुभ विधि से लाभ प्राप्त करना है, ये उसका अर्थ है। लेकिन आज वो स्वस्थिति भी नहीं रही। शुभ शब्द हम भूल गए। येन केन प्रकारेण लाभ होना चाहिए, ये हमें याद है। हमें शुभ रीति से लाभ करना है, ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। इसलिए कहते हैं सहज मिले सो दूध बरोबर, मांगने से मिले वो पानी बरोबर, और खींच लिया सो खून बरोबर। तो हमने धन किस विधि से कमाया, कर्म की हमारी स्थिति क्या है, जमा कितने होते हैं? कहते ना, इसका पुण्य का खाता जमा है, समय पर उसे काम आया, ये बच गया, कोई पुण्य जमा होंगे, कहते हैं ना। तो शब्द विचार, शब्द और कर्म, ये तीनों श्रेष्ठ है तो समय भी सफल, और तीनों व्यर्थ है, नकारात्मक है तो समय भी वेस्ट है। इसलिए सकारात्मक और शक्तिशाली है तो जमा होता है, नकारात्मक और व्यर्थ है तो वो माइनस के खाते में जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि आवश्यक चिंतन हमें करना है, आवश्यक कर्म हमें करने हैं, लेकिन आज तो आवश्यकता क्या है और इच्छाएं क्या है, उसके सूक्ष्म भेद को भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए होती इच्छा है और कहेंगे कि इच्छा नहीं है पर ये जरूरी है मुझे। इच्छाओं को भी आवश्यकता में खपाने की हम कोशिश करते। हमें इच्छाएं होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, और फिर हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे जरूरी है ये। इसलिए आवश्यक चिंतन भी नेगेटिविटी से आज कलर्ड हो गए। इसलिए पॉजिटिव नेक्स्ट टू नील हो गया, लगभग जीरो जैसा। तो ये चारों खजाने क्या हमारे फुल परसेंटेज में जमा है? है? हम हर एक अपने में देखते हैं कि हमारे में इम्बैलेंस है, कभी जमा होता है कभी माइनस होता है, बहुत करके खर्च होता है बहुत कम जमा होता है, कोई गुण है कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति है कोई शक्ति नहीं। हर एक व्यक्ति अपने खजाने को कैसा देखना चाहता है, जमा या खाली? जमा। आपके घर के सामने बगीचा है, उसको हरा भरा फला फूला आप देखना चाहेंगे कि उजड़ा हुआ देखना चाहेंगे? सूखा, हरा भरा। तो हमारे अंतर जगत में इतनी योग्यताएं हैं, हम अपने अंदर के बगीचे को हरा भरा देखना चाहेंगे या उजड़ा हुआ सूखा? हरा भरा। तो वास्तविकता आज ये है कि हमारी पर्सनालिटी में इम्बैलेंस है, कहीं हम अति प्यार से चलते हैं कहीं हम अति स्ट्रिक हो जाते, कहीं हम बहुत क्षमा कर देते हैं कहीं हम करेक्शन ही उसको देते रहते, कभी हम बहुत बिजी रहते हैं लेकिन अंदर से इजी नहीं रह पाते, बिजी होते हैं तो टाइट टेंस हो जाते, कहीं अड़ जाते हैं कहीं अति झुक जाते, इसलिए सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि इम्बैलेंस है पर्सनालिटी। तो हम कुछ एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कि हमें अपनी पर्सनालिटी में बैलेंस लाने की जरूरत है। बच्चों को आप बहुत प्यार से चलाते हैं लेकिन अगर आप उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं जहां जरूरी है तो रिजल्ट क्या आएगा? बच्चे बिगड़ जाएंगे। कभी आप अति स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन उससे प्यार नहीं देते हैं तो भी वो इस घर के अंदर अपनापन महसूस नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये सारी बातें हम समझेंगे। आप अपनी डायरी में एक साइकिल ड्रॉ करिए, और उसके चार भाग करिए, चार भाग करिए। ऊपर के दो भाग है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। लेफ्ट साइड के भाग में लिखिए विचार, ऊपर के राइट साइड वाले हिस्से में लिखिए शब्द। राइट साइड नीचे के हिस्से में कर्म, विचार शब्द कर्म समय, चौथे हिस्से में समय। आप स्वयं बिंदु आत्मा है और उसमें समझो ये चार खजाने। अब कैसे हमारा इम्बैलेंस कहां कहां होता है, ये एक एग्जांपल। मान लो आपके स्टोर में एक व्यक्ति है, आपके दुकान में वो काम करता है लेकिन वो बार बार एक ही गलती करता है, आपको कोई विशेष कार्य एक निश्चित समय में पूरा करके देना, कोई ऑर्डर मिलता है और उसको टाइम पर आपके बना के देना, लेकिन वो व्यक्ति बार बार गलती करता है। अब यहां आपके शब्द और विचार में क्या बैलेंस चाहिए? गलती करता है तो हम बार बार उसको करेक्शन देंगे ना कि भाई तुम ये ठीक करो, अच्छा ये फिर तुम भूल करके ले आए, आज फिर तुमको सिखाया था तो भी तुमने ठीक नहीं किया। जो हमारा कारीगर बार बार भूल करेगा तो हम उसको करेक्शन देते। तो यहां हमारी पर्सनालिटी में क्या बैलेंस चाहिए? शब्दों में तो आपने करेक्शन दिया, विचारों में क्या चाहिए? क्योंकि अगर मेरे मन में भी ये रह गया कि बुद्धू है, समझता ही नहीं है, 10 बार सिखाया फिर भी वही करता है, जाए यहां से, माना मन में भी वो चीज आ जाती है ना। तो यहां चाहिए कि शब्दों से हम करेक्शन दें, सुधार दें, लेकिन हमारे मन में उसके लिए क्षमा भाव, उसके अवगुण पर हम चित्त में ना रख ले, इसलिए कि मेरे से भी तो कहीं गलती होती है। अच्छा मुझे भी क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं जीवन में 50 बार क्रोध करता रहता, बार बार मेरे से वो भूल होती है कि नहीं होती? तो हम शब्द से करेक्शन दे कि देखो टाइम से काम देना है और ठीक क्वालिटी हमें दे दे, लेकिन फिर हमारे मन में क्षमा भाव हो, तो वो व्यक्ति आपसे, आप अनुभव करके देखिए, वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि उससे पता है कि मेरा शेठ मेरे अवगुण को, कमी को चित पर रख के व्यवहार नहीं करेगा, वो मन से मुझे माफ करता है, इसलिए उसे बुरा नहीं लगे, क्योंकि वो सोचेगा कि इनका अंदर का भाव मेरे लिए दया का है, सिखाने का है, क्षमा का है, पर मुझे कहेगा तो जरूर ना। पर हमने शब्दों से करेक्शन दिया बार बार बोल के, लेकिन मन में क्षमा भाव नहीं रखा, चित्त में भी वो बात रख ली, तो फिर काम नहीं बनता है। क्योंकि हम कितने कारीगर को बदलेंगे, हरेक में कुछ ना कुछ है। तो यहां चाहिए हमारी पर्सनालिटी में वो बैलेंस कि शब्दों से करेक्शन दे लेकिन विचारों में क्षमा भाव रखे। दूसरा एग्जाम्पल, विचार और कर्म में कैसा बैलेंस चाहिए? एक मनोचिकित्सक है, एक साइकियाट्रिस्ट है, और वो अपने कार्य में बहुत ही सफल है, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, बहुत पेशेंट आते हैं। एक बार अचानक उन्हें समाज में अपनी निशुल्क सेवा देने का अवसर प्राप्त होता है और उसने रोगियों को अधिक प्रेरणा देने का अवसर भी है, तब वो सही निर्णय लेने के लिए, क्योंकि उससे अपनी प्रैक्टिस के द्वारा बहुत कमाई है, वो सेटिस्फाई है, लेकिन समझो उनके सामने ये मौका आता है कि समाज सेवा के नाम, एक तो समाज सेवा और उसके द्वारा अनेक रोगियों के कनेक्शन में वो आएगा, कांटेक्ट में आएगा, उसको अनेक पेशेंट के कांटेक्ट मिलेंगे, तो यहां उसे अपने विचार और कर्म में क्या बैलेंस लाना चाहिए? क्योंकि वो अपनी प्राप्तियों से सेटिस्फाई है, कर्म से सेटिस्फाई है कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा, मेरी डिस्पेंसरी बहुत अच्छी चल रही, लेकिन विचारों में क्या चाहिए? तो यहां चाहिए कि संकल्पों में संतुष्टता है, मन उसका सेटिस्फाई, लेकिन कर्म में सदा महत्वाकांक्षी हमें रहना चाहिए। जैसे कई बार लोग हमें पूछते हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, माना क्या हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए, फिर तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे जीवन में। लेकिन नहीं, हम ये कहते हैं कि हम और आगे बढ़ने की और ऊंची स्थिति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन जो है उसमें भी संतुष्ट रहे। अभी स्थिति क्या है? जो है उसमें हम संतुष्ट रहे, और महत्वाकांक्षाएं भी करते हैं और जो है उसमें भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए कितना भी प्राप्त करते हैं तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हमारे लक्ष्य ऊंचे हो, विचार आदर्श महत्वाकांक्षाएं ऊंची हो, लेकिन जो वास्तविकता है उससे भी हम सेटिस्फाइड हैं। ये बैलेंस हमारी पर्सनालिटी में चाहिए तो हम अपने जीवन से, प्राप्तियों से संतुष्ट रहते हुए भी प्रगतिशील हम बन सकते। तो आपने क्या लिखा? पहला जो है शब्द के और विचार के, उसमें एक एरो बनाइए, सीधा एरो, और शब्द के तरफ जो है वहां लिखिए सुधार, करेक्शन, और विचार के तरफ एरो के आगे लिखिए फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता। और अब जो आया विचार और कर्म का दूसरा एग्जाम्पल, तो क्रॉस में एरो जाएगा, कर्म और विचार के क्रॉस में। तो कर्म में एरो के एंड में लिखिए महत्वाकांक्षी, लेकिन विचार के साइड एरो के एंड में लिखिए सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता। ये बैलेंस चाहिए। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, समय और कर्म। अब आपका एरो जाएगा नीचे के दो हिस्से में स्ट्रेट, समय और कर्म के दोनों को जोड़ता हुआ एरो। एग्जाम्पल क्या है? जब मैं अपना कार्य स्नेह से करता हूं, सबको प्यार से चलाता हूं, प्यार से कहता हूं, तो लोग उसका फायदा उठाते, होगा ना अनुभव आपको? इसलिए कई कहते हैं कि देखो हम प्यार से चलते हैं, नम्रता से चलते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। पर वहां क्या बैलेंस चाहिए? जब मैं अपना कार्य स्नेह से करता हूं तब अन्य उसका फायदा लेते हैं, ऐसे समय क्या हमें क्रोधित होना चाहिए? कई कहते हैं ना कि आंख दिखाने बिगर काम नहीं करते, गुस्सा बेंजी करना पड़ता है। यदि हम क्रोधित होते हैं, अर्थात हम आदर्श तो नहीं रहे ना, प्यार से चलते हैं तो लोग काम नहीं करते हैं, तो वास्तव में रिजल्ट ये आ रहा है। अब क्रोध करे वो भी तो रॉयल ढंग नहीं है, आदर्श ढंग नहीं है। यदि हम अपने समय को व्यवस्था करते हैं तो सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं, तब इसमें प्रयुक्त समय और कर्म दोनों शक्तियों का हम कैसे बैलेंस करें? क्रोध करें तो वो ठीक नहीं लगता है, प्यार से चलाते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, तो यहां क्या बैलेंस चाहिए? कि कर्म तो हम प्यार से कराएं, क्योंकि गुस्से से कराना वो कोई आदर्श विधि नहीं, लेकिन समय के हिसाब से कौन सा गुण धारण कर? कायदा, डिसिप्लिन, कि देखो ये काम हमें करना है, लेकिन हाँ 2 घंटे में आपको करके देना है। समय की पाबंदी, कि टाइम में आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी मांगिए, कहिए प्यार से, कराइए प्यार से, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर टाइम फैक्टर के बारे में डिसिप्लिन हो जाइए कि भाई 2 घंटे में ये काम करके देना है, ठीक है? तो आप प्यार से कराएंगे और समय पर काम हो जाएगा और सफलता मिलेगी। तो टाइम के हिसाब से डिसिप्लिन रहिए, टाइट रहिए, और कर्म कराने की विधि जो है वो प्यार की अपनाइए। हाँ, प्यार से बोला, वो तो आप उसको चांस देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उसमें भी तो कहेंगे ना, देखो मैं 3 बार, वो भी प्यार से कही कि मैं 3 बार आपको मार्जिन देता, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप योग्य नहीं है और फिर हम दूसरा चूज करेंगे। तो उसे लगेगा कि मेरी भूल के कारण मुझे निकलना पड़ा, मेरी भूल के कारण मेरा ये पेमेंट कट हुआ। पर हम 1 बार 2 बार 3 बार मानवता से, प्यार से, टाइम फैक्टर बताते हुए उसे डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। अब समय और शब्द के हिसाब से एक सिचुएशन आपके सामने रखती हूं। समय और शब्द क्रॉस में एरो करिए लाइन। मान लीजिए एक मालिक ने अपने ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है और वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। समय के हिसाब से वो फुल समय देता है, सदा अवेलेबल रहता है, जब चाहिए व्यक्ति उनके पास आए, बताए, कहे, पूछे। टाइम के हिसाब से वो उदार चित्त है कि वो पूरा टाइम देता है, परंतु कुछ समय के बाद लोग उसकी इस पॉलिसी में भी प्रशंस नहीं रहते, खुश नहीं रहते हैं। इसका कारण क्या है? आप टाइम बहुत देते हैं, जब चाहे अवेलेबल रहते हैं, कभी भी कोई आया पूछने करने आप समय देते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथी आपसे खुश नहीं है, क्या कारण? हाँ, शब्द में कड़वास होती है कि आप बोल बोल ज्यादा करते, शब्दों में इकोनॉमिकल नहीं। कोई पूछने आया, कहने आया, तो आप खुद भी उसको बहुत कुछ बोलते सुनाते हैं, इसलिए टाइम देने पर भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि आपका वाणी पर संयम नहीं है। तो शब्द के तरफ लिखिए कि यहां आप इकोनॉमिकल बनी, जरूरी बात बोली, आवश्यक उचित शब्दों में कहिए, समय देने में उदारचित रहिए, तो लोगों को आपके लिए प्यार होगा कि वो समय भी देते हैं और समझाते भी हमें प्यार से कम शब्दों में। तो शब्द के तरफ आप लिखिए इकोनॉमिकल, और समय के तरफ लिखिए जनरस, उदार। अब आपके सामने एग्जाम्पल है कर्म और शब्दों का। एक गृहिणी का एग्जाम्पल दिया है कि श्रीमती आहूजा अपने परिवार और कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित गृहिणी है, परंतु ऐसा क्या है कि उसके परिवार के सदस्य और अन्य संबंधी उनसे तनाव महसूस करते हैं। वो हमेशा ऐसे कहती रहती है कि मैं ही सारा काम करती, कोई जवाबदारी लेता नहीं। आज देखो दूध वाला आया नहीं, सब्जी वाला आया नहीं, करेंगी भी खुद ही, लेकिन बोल बोल भी करेगी। तो यहां क्या बैलेंस चाहिए, क्योंकि इतना टाइम देते हैं, आप खुद करते भी हैं सारा काम, लेकिन फिर भी लोग आपसे आप प्रिय उसको नहीं लगते हैं, तो यहां क्या बैलेंस चाहिए? हाँ, ये है कर्म और शब्द, कि कर्म में आप रेस्पॉन्सिबल है, जवाबदारी से खुद सब कुछ करती है और कोई करता भी नहीं है, ये सही बात है, लेकिन हाँ आप शब्दों में सदा वो बोझ वो चिंता भार बताती रहती है, इसलिए लोग आपसे खुश नहीं रहते हैं। तो वहां आपके शब्दों में चाहिए निश्चिंतता, कि जब खुद समझ लो अंदर अंदर कि मैं ही करती हूं, मुझे ही करना है, तो बार बार ये काम वो काम फलाना नहीं आया ये कह के दूसरों को चिंतित करने का क्या फायदा है। तो वहां आपके शब्द हो केयर फ्री, निश्चिंतता के, कि सब हो जाएगा, मैं कर लूंगी, तो आपके करने की वैल्यू होगी कि ये करती भी है बताती भी नहीं है और दूसरों को भी टेंशन में नहीं लाती है, तो और ही लोग सहयोगी बने, करे भी और बोलने से वैल्यू भी ना हो तो फायदा क्या है, कम से कम करें और उसकी वैल्यू तो पाएं। और अब एग्जाम्पल है समय और विचार, सीधा एरो करिए समय और विचार में, शब्द और कर्म में आपने किया ना, कि कर्म की तरफ आप लिखिए जिम्मेवारी, वो है आप भी, लेकिन साथ में क्या चाहिए शब्दों में निश्चिंतता, कि ऐसे शब्द हम बार बार काम बता के बोलते ना रहे जो दूसरे भी चिंतित हो जाएं और टेंशन में आ जाएं, तो वो बैलेंस चाहिए। अब है समय और विचार लास्ट, सरोज शर्मा ने अपने जीवन में ये संकल्प किया है कि वो सभी की सहायता करेगी और वो कभी भी किसको भी किसी कार्य के लिए ना नहीं कहती है और सभी उससे प्रसन्न है। उसने ये संकल्प किया है कि भाई मैं सबको कोऑपरेट करूंगी, जहां तक हो सके हम ना नहीं करेंगे, सबको मदद करेंगे। फिर भी वो अपने को इतना सफल नहीं समझती है और कभी कभी उदास हो जाती है। तो संकल्पों में विचारों में तो आप फ्लेक्सिबल है कि भी सबको मदद करेंगे, सबको हम सहयोग देंगे, लेकिन आप उदास क्यों हो जाती है, प्रसन्न क्यों नहीं रहती है? क्योंकि समय उसमें बहुत देना पड़ता है। तो हम मदद करें लेकिन समय के हिसाब से भी फर्मनेस मजबूती रखें, कि भाई ये 2 घंटा है, जिसको चाहिए मैं मदद कर सकती, अभी मैं 1 घंटा फ्री हूं, आप बोलिए क्या मदद चाहिए, क्योंकि आखिर हमारी अपनी भी लाइफ है, हमारी अपनी भी दिनचर्या है। पर हाँ, हम ये भी नहीं कि खुद में ही उलझे रहना चाहते हैं या खुद ही आराम से, हम मदद करना चाहते, पर हम कहे कि भाई अभी मेरे पास 1 घंटा है, अभी जो मदद चाहिए वो मैं कर सकती, तो मदद भी हो जाएगी और खुद का भी ठीक चलेगा। लेकिन टाइम के हिसाब से आप फर्मनेस नहीं रखेंगे तो लोग तो मदद ले लेंगे और आपका कुछ भी ठीक से दिनचर्या नहीं चलेगी, तो आपको कहां से खुशी रहे। तो तो ये है प्रैक्टिकल में हमारे जीवन के कुछ एग्जाम्पल, और ये मैं आपके सामने रखती हूँ। आपने भी इसी रीति से बनाया ना? कि ये सब बैलेंस चाहिए, लव है तो लॉ भी, डिसिप्लिन भी, फ्लेक्सिबल, आप में फर्मनेस है, दृढ़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी, आप रेस्पॉन्सिबल हैं तो रिलैक्स भी रही, आप बिजी हैं तो इजी भी रही, आप ऑथोरिटी हैं तो हम्बल भी रही, नम्रता। तो ये अगर हमारे पर्सनालिटी में, हमारी आंतरिक गुण शक्तियों का मन वचन कर्म में बैलेंस आएगा तो हम अपनी जीवन बहुत चैन से जी सकते हैं, और तब हमारे में वो कला आ जाएगी खुद को चलाने की, दूसरों को चलाने की, अपने बिजनेस को चलाने की। तो अब हर एक अपना ऑब्जर्वेशन करें कि मेरी अपनी पर्सनालिटी में कहां इम्बैलेंस है और मुझे कहां ठीक करना। रहने दो, आगे हमारा टॉपिक लेना है ना हमें, हो गया ठीक है। तो जब ये आपके अंदर बैलेंस जैसे जैसे आता जाएगा, आप में वो आर्ट आ जाएगी अपने को चलाने की, फैमिली को चलाने की और अपने बिजनेस को चलाने की। अब हम बिजनेस पर आते हैं। ये हुआ पर्सनालिटी के अंदर बैलेंस, जो हमारा आंतरिक, इसी को आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते, ये है आंतरिक पुरुषार्थ। लेकिन अब बिजनेस में रोज तीन हैं जिनसे आप रोज संपर्क में आते, डेली आपका उनसे काम है। एक ग्राहक, दूसरा कर्मचारी, आपके साथी, कारीगर, नौकर, जो भी आप कहते हो, कर्मचारी हम उससे कहेंगे, हमारे साथी कर्मचारी। और तीसरा जिसके रोज लेन देन आप करते, माल, सामान, चीजें, रोमन चीजें, मतलब देखो तीन चीज है, ग्राहक, कार्यकर्ता और पदार्थ, माल सामान। इन तीनों से आपका रोज इंटरेक्शन है, रोज का इन तीनों से आदान प्रदान है। अब तीनों के साथ तीन बातें कौन सी हम धारण करें ताकि हम सक्सेस हुए अपने बिजनेस में, व्यापार हमें एक कला लगे, जैसे आर्ट नेचुरल होती है ना, हम कहते हैं भाई ये तो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल होती, तो बिजनेस हमें आज एक बोझ लग रहा है, बंधन, भार महसूस होता है। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथी कर्मचारियों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप में ये दो चीज चाहिए, युक्ति मीन्स टैक्ट चाहिए और निष्ठा मीन्स सिंसियरिटी चाहिए। टैक्ट कहते हैं ना, एक ही लकड़ी से सबको नहीं चला सकते, हर अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं, अलग अलग भाव स्वभाव के लोग आते हैं, तो हमें उससे युक्ति से हैंडल करना होता है। अब कई युक्ति माना चालाकी की बात मैं नहीं कर रही हूं, वो तो है आप लोगों में। हाँ, यहां युक्ति मीन्स विधि, मेथड, आप में वो युक्ति चाहिए, वो मेथड चाहिए कि किस व्यक्ति को कैसे चलाना है। इसलिए युक्ति का हम यहां अर्थ करते हैं सत्यता पूर्ण बुद्धिमानी। हम बुद्धि चलाते हैं लेकिन इसमें स्वार्थ झूठ ये सब आ जाता है, इसलिए वो चालाकी गलत हो जाती। हम बुद्धिमानी बुद्धिमानी से चले लेकिन वो बुद्धिमानी सत्यतापूर्ण, इसलिए सरल शब्द मैंने कहा टैक्ट का अर्थ है विधि मेथड। आप में वो मेथड हो किसके साथ कैसे चलना, तो अपने आप हरेक को आप चला सकेंगे। और निष्ठा सिंसियरिटी बेपरवाही लाजवाबदारी दिल से नहीं ऐसा नहीं, निष्ठा सिंसियरिटी से चाहिए कि हम उसमें भी सिंसियरिटी चाहें, खुद भी सिंसियर चले, क्योंकि हम ठीक चलते हैं तो वो भी ठीक चले। अगर मुझे सबको मैं चाहूं कि सभी राइट टाइम ऑफिस में आए तो पहले मुझे क्या करना होगा, बस मैं खुद राइट टाइम आऊं, मेरे में सिंसियरिटी होगी तो उनको भी मैं सिंसियरली चला सकूं। अब ग्राहक के साथ भी ये दो चीज चाहिए, एक तो मेथड चाहिए चलाने की, क्योंकि ग्राहक भी भांत भांत के आते हैं, कोई माथा खाने आएंगे, कोई सब चीजें देंगे ले देखेंगे खुलवाएंगे और कुछ भी नहीं लेंगे, टाइम खर्च करवाते हैं, कोई सीधे साधे भी होते हैं भोले भी होते हैं, है ना, वैरायटी ग्राहक होते हैं। तो आप में मेथड चाहिए कि मुझे किसको कैसे चलाना है। लेकिन दूसरी बात, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आप में दुकान चलाने में माल सेल करने में विशिष्टता चाहिए, यूनिकनेस चाहिए। आपकी दुकान में आपके बेचने के विधि में कोई ऐसी विशेषता हो जो लोग खींच के आ जाए। आप देखना आसपास कोई थोड़ी सी एक विशेषता करते हैं ग्राहकों को खींच लेते। शायद गुजरात के भाई बहनों को याद होगा, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है, लेकिन आइसक्रीम में बहुतों के आइसक्रीम चल रहे थे लेकिन बीच में गोकुल आइसक्रीम पूरा, हाँ फिर वो बंद हो गया लेकिन उसने पूरा मार्केट उस समय सर कर लिया एक यूनिकनेस से, एक विशिष्ट बात उसने की। अब क्या थी, अभी शायद बंद हो गया है मार्केट उसका, लूज हो गया है, हाँ शायद उन्होंने स्टील की चम्मच उसमें दी थी या कुछ ऐसा था विशिष्टता, और बहुतों को उन्होंने आकर्षित कर दिया। हमने एक दुकान वाले के पास देखा कि वो ठंडा शरबत पिलाता था, उसके कारण लोग वहां खींच के पहुंचते थे। तो माना कोई भी रीति से, चाहे आपके व्यवहार में, आपके चीज देने में, चीजें रखने में, दिल करने में, कुछ भी आप विशिष्टता करिए तो ग्राहक आपके तरफ खींच के आएंगे, आपके उनके साथ सदा के संबंध। हाँ देखिए, एक तो हमारा इंटेंशन मेरे अनुभव से कि हमें रियलिटी से लोगों को खींचना, तो मैंने देखा है कि भले आप सरल हैं सीधे हैं आप में सत्यता है, लोग विश्वास जरूर आप में करें, वो भी परखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं परख, ऐसा है कि वो हमारा ही हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत उनको चीट किया है, अनुभव ऐसे कराए हैं, इसलिए अब वो जाग गए। पर थोड़ी सी आ नहीं, इसलिए धीरज रखना। आज हम भगवान का सत्य ज्ञान ही लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हमने भी बहुत सुना है क्या क्या लोग हम लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन हम वो माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो जानते नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं। और हमें तो देना ही है। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने ये देखा है कि भले लोग बहकावे में आएंगे, लेकिन आखिर सत्य के पास उसे आना ही। और तीसरी बात पदार्थ, गुड्स, मटेरियल के संदर्भ में भी हम दो विशेष धारणा रखें, क्योंकि आज माल सामान में सच्चाई नहीं है, मिक्स है, एडल्ट्रेशन करते हैं, उसके कारण कितने नुकसान होते, लोग अनुभव तो करते ही है, एक बार, दो बार, दस बार हमारे से धोखा खाएंगे, आखिर तो वो भी जागेंगे ना। माल सामान ठीक यूज नहीं करते हैं, लाखों खर्च करके वो ब्रिज बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, और एक ही बारिश में सारा खत्म हो जाता है। तो पदार्थ जो हम यूज करते हैं, मटेरियल, उसमें निष्ठा, सिंसियरिटी से, ताकि वो खर्च व्यर्थ न जाए, वो चीज फेल न जाए, वो व्यक्ति हमारे से धोखा न खाए, निष्ठा से चीज दे और उसमें भी यूनिकनेस रखे, विशिष्टता, वो चीज भी अच्छी हो, उसका दिखाना, उनका दिखावा भी सुंदर हो, पैकिंग भी सुंदर हो, हर रीति से अगर चीज यूनिक होती है तो लोग जरूर उसको खरीद करते हैं। तो ये तीनों के संदर्भ में ये तीन गुण अगर हम धारण करते हैं तो हम अपने व्यापार में जरूर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और खुद को सफल भी महसूस कर सकते हैं। अब ये सब कुछ आप अपने अनुभव भी से भी समझते हैं, हम तो कोई व्यापारी है नहीं, आपके जितने अनुभव हमारे पास नहीं है, हमें तो जो बाबा ने सिखाया है ज्ञान के हिसाब से और उस आध्यात्मिक बैकग्राउंड के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन सार रूप में ये बात आप जरूर महसूस करते होंगे कि जरूर बात सही है, हमारी पर्सनालिटी में हमें ये बैलेंस लाने की आवश्यकता है और उसके द्वारा हम अपने व्यवहार और व्यापार दोनों में हम सफल हो सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हम करें कैसे, हमारे अंदर वो आए कैसे, क्योंकि जब आप में बैलेंस होगा, जमा होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब आपके विचार श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, वाणी यथार्थ, समय को आप सफल करते हैं, अपने अंदर गुण और शक्तियों का बैलेंस लाते हैं, तो जब जमा का खाता भरपूर होता जाता है तो उसके ये रिजल्ट देखो क्या आएंगे, आपके विचारों में क्या रिजल्ट आएगा, वो पॉजिटिव होते जाएंगे। पॉजिटिव कैसी भी बात बनेगी, लेकिन आपको पॉजिटिव विचार आएगा कि चलो इसमें भी कोई लेसन हमें सीखना होगा। आज ये घटना हुई, देखने में नुकसान हुआ, लेकिन हम बाद में कहते भी हैं कि भाई अच्छा हुआ, इतने से ही हो गया, मैं जाग गया, अभी मैं नहीं जागता तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान मुझे हो जाता। तो फिर आपके विचारों में पॉजिटिवनेस आएगी और आपके शब्द शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि जब मुख बोलता है पर चरित्र वो बात नहीं बोलता है तो हमारे शब्द खोखले हो जाते हैं। आप मुख से तो मीठा मीठा बोलेंगे, आइए आइए बहन जी लीजिए, बहुत अच्छा है, आप निश्चिंत रहिए, पर अगर सच्चाई नहीं है, आपका कर्म नहीं बोल रहा है, तो आपके शब्द में पावर नहीं रहे। पर जब आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होती जाएगी तो आपके शब्द समर्थ, आपके शब्दों में ताकत आएगी। भाई लोग इनके कहने से करने लगते हैं, वो पावर आपके शब्दों में आ जाएगी। और कर्म जो है वो आपके सुखदायी बनेंगे, कल्याणकारी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे। आपके कर्म आपको सुख देंगे, आपके ग्राहकों को सुख देंगे, आपके साथियों को सुख देंगे, और समय जो है वो आपका रचनात्मक क्रिएटिव बन जाएगा, प्रोडक्टिव बन जाएगा, समय सफल हो जाएगा। ये रिजल्ट आप खुद में अनुभव करें। अंदर के बैलेंस से, अंदर के एम्पावरमेंट की प्रैक्टिकल में रिजल्ट ये मिलेगी। अब ऐसी स्वस्थ स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हाँ, आप सभी को अगर मैं पूछूं कि अगर क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं, हाँ, तो आप हरेक कहेंगे कि हाँ, हम हरेक अपने में चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए। उसकी मेथड में अब आपको बताती हूं। ये एक एग्जांपल आपके सामने दिया है कि आपने वो देखा होगा ना, नट जो रस्सी पर चलता है ना, हाथ में लकड़ी लेता है और वो जो रस्सी बंधी हुई होती है उस पर वो चल के दिखाता है। वो बैलेंस रख सकता है क्यों और कैसे? तो तीनों चीजें हैं कि वे रस्सी पर चलना कॉमन बात नहीं, हर कोई नहीं चल सकता, तो ये अपने आप में यूनिक हो गया, विशिष्ट हो गया। लेकिन वो क्यों चल पाता है? दो चीज है उनके पास, वो विधि है, कला है और सिंसियरिटी है, इसलिए ये यूनिकनेस वो कर पाता है। उसके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकूंगा, और दूसरों में भी विश्वास है कि लोग मेरी इस कला को एप्रिशिएट करेंगे। जीवन के बैलेंस की बात ऐसी ही, आप हर एक सोचते हैं कि बात सही है बेंजी की, हम भी जानते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों का अभाव है, हमें अपने आप में भी विश्वास नहीं, इसलिए सोचते हैं हम कहां ऐसे बन जाएंगे, और दूसरों में भी विश्वास नहीं है कि हम अगर ऐसे महान बनेंगे, बैलेंस पर्सनालिटी वाले बनेंगे, जिसको हम यहां सरल शब्दों में कहते हैं कि योगी बनो, तो वो हम बनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ऐसा सोचते हैं, लोगों में भी विश्वास नहीं है कि मैं राइट करूंगा तो आज नहीं कल लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। लोगों में भी विश्वास नहीं, मुझे अपने में भी विश्वास नहीं। तो ये दोनों चीज हमें डेवलप करनी होगी, और उसका उसके लिए हमें अपने स्वमान को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आत्मा स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ये तीन चीज हमारे में चाहिए। तब हम अपनी आत्मा स्थिति को शक्तिशाली, श्रेष्ठ और शुद्ध बना सकेंगे। वो तीन चीज है कि एक तो लक्ष्य पक्का चाहिए। हाँ करेंगे, जैसे यहां सब सुना के जाते हैं ना, बेंजी जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमारी दादियां कहती है कि जब कहते हैं कि कोशिश करेंगे, माना ये कच्चा है, पक्का निर्णय नहीं। लक्ष्य मजबूत कि मुझे बनना ही है, जो राइट है वो करना ही है। जब परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, हमें ऐसा संगठन और साथ मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? मुझे बनना ही, खुद का निर्णय चाहिए, लक्ष्य। क्योंकि हमारे यहां हम एक वाक्य कहते हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। अगर लक्ष्य ही ढीला है तो लक्षण गिरे हुए ही रहे। इसलिए महावाक्य है कि लक्ष्य चुक माफ, नहीं निशान नीचा। आप लक्ष्य चूक गए वो माफ हो सकता है, पर नीचा ही लक्ष्य रखा वो माफ नहीं। एक इंसान होकर हमारा लक्ष्य ऊंचा हो कि मुझे देवता बनना, नीचा नहीं इंसान से जानवर जैसे या असुर जैसा मुझे नहीं चलना चाहिए, वो माफ नहीं होगा। हाँ, देवता बनने में मैं 5% बन सका, 20% बन सका, कोई बात नहीं। गीता में कहा है ना, अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान मैं आपसे योग लगाऊं, दैवी संपदा धारण करूं, लेकिन वो करते करते अगर मैं मर गया तो क्या, तो उसे जवाब दिया गया है कि जितना किया उतना तुम्हारे साथ चलेगा और उससे फिर तुम और आगे बढ़ो। इसलिए लक्ष्य सदा ऊंचा, यथार्थ, शक्तिशाली। दूसरी बात, तो लक्ष्य की नॉलेज चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सिर्फ हम कमाने के लिए संसार में नहीं आए हैं, बेशक कमाना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन जैसे वाल्मीकि की कहानी में सुना होगा ना कि वो पाप करके कमाता था और परिवार वालों का पेट भरता था, तो नारद जी ने कहा कि तुम पूछ के आओ कि कमाने के लिए जो तुम पाप कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे परिवार वाले हिस्सेदार बनेंगे। तो उसकी बीबी ने कहा कि तुम्हारा काम कमाना है, हमारा पोषण करना है, हमने ये थोड़ी तुमको कहा कि तुम पाप करके कमाओ, इससे तुम्हारे पाप का तुम जिम्मेवार हो। और कर्म का सिद्धांत तो यही है, किसी के कहने से भी कोई जवाबदार नहीं हो सकता है ना, हिस्सेदार। इसलिए लक्ष्य मेरा क्या है, मुझे किस विधि से जीना। व्यापार जीवन के लिए है, जीवन केवल व्यापार के लिए नहीं है ना। इसलिए लक्ष्य मुझे ऊंचा, श्रेष्ठ, शुभ, कल्याणकारी, वास्तविक बनाना। लेकिन दूसरी बात, रुचि, इच्छा हो, तीव्र इच्छा कि मुझे करना है। तीव्र इच्छा के बगैर आपकी शक्ति कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, आप क्रियाशील नहीं हो जाएंगे उस दिशा में। और तीसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी ही आत्मस्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी, आपको रोज चिंतन करना होगा, रोज ज्ञान सुनना होगा, रोज अपनी चेकिंग करनी होगी, रोज अपने पर अटेंशन देना होगा, रोज अपने आप से बात करनी होगी, रोज परमात्मा से वार्तालाप करना होगा। ये अभ्यास, अगर ये तीनों चीजें हम करते रहेंगे तो जरूर हमारी आत्मस्थिति हम ऊंची, शक्तिशाली बना सकते, सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति में हम आ सकते। और तब ये तीन प्राप्ति हमें होगी। जब आप अपने आत्म सम्मान में स्थित होंगे, स्व में मैं स्थित हूं, तो सबसे पहला राइट डिसीजन ले सके। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था वहां पर कि जब हम तोलते हैं तो कांटा स्थिर होता है, तब डिसीजन लेते हैं कि इतना वजन हुआ। जब तक कांटा हिलता है तो ग्राहक भी नहीं मानता है कि नहीं रुको, अभी पलड़े ऊंचे नीचे हो रहे। तो हमारी पर्सनालिटी में इम्बैलेंस होगा तो राइट डिसीजन नहीं आएंगे। जब इन गुण शक्तियों का बैलेंस होगा तो करेक्ट डिसीजन आएंगे। दूसरा, आप सर्व से सम्मान प्राप्त करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के लिए लोगों को विश्वास होगा और आपको सबसे मान मिले। और तीसरी बात, आपका उचित वार्तालाप होगा, आप में योग्य बोलने की कला आएगी। न कड़वा बोलेंगे, न मीठा बोले और जहर वाला हो, काटने वाला हो, वो भी नहीं। आप में वाणी में संयम आएगा, आप में उचित वार्तालाप करने की कला डेवलप होगी और अल्टीमेट आप क्या बन जाएंगे, फाइनल रिजल्ट हमारी पर्सनालिटी में क्या आएगा, ये इसमें बताया है कि जब आपका अपने आप से संबंध, अभी हम अपने आप को ही भूल गए, हमारा अपने आप से ही संबंध नहीं रहा है, हमें बाकी सबके लिए टाइम देने की फुर्सत है लेकिन खुद के लिए फुर्सत नहीं। भी शादी में तो मुझे जरूर जाना ही पड़े, फलाना बीमार है जरूर जाना पड़े, ये प्रसंग है मुझे वहां जरूर जाना पड़े, तो अपने कल्याण का पुरुषार्थ भी जरूर मुझे ही तो करना होगा, हा? कि दूसरा करेगा और मुझे मिल जाएगा, भई आप खा लो मेरा पेट भर जाएगा, होगा? क्यों खुद भी खाते हैं? तो हमें अपने कल्याण का काम हमें ही करना होगा। तो आज हम न खुद के साथ बैठते हैं, शांति से एकांत में बैठते हैं। आप यहां आए हैं, इतना सुंदर स्थान है, बगीचे हैं। आप बताओ आप में से आधा घंटा 15 मिनट अकेले शांति में कौन बैठे? देखो कितने गिने चुने लोग। यहां आके भी हम आपस में ही मिलते रहे, जैसे देखो गाय भैंस को घास मिलता है उस समय वो एक साथ सब खा लेती, फिर क्या करती? फिर शांति से बैठ के उगारती रहती। तो अब आप चलो 2 दिन में सब बुद्धि में भर लिया ज्ञान, अब आपका काम है, अब आप ऐसा करना कि जाकर रोज की दिनचर्या में फिक्स कर देना कम से कम ये 15 मिनट, और अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग और संध्या के समय, भले आप दुकान में बैठे हो, खुद साइलेंस में अपने मन की एकांत स्थिति में बैठे। आप ग्राहक आया, बात करिए, प्यार से सब बताइए, फिर अपनी स्थिति में। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए और कोई समय निकालने की बात ही नहीं है, समय है। आज हम भी बिजी रहते हैं, पर एक व्यक्ति मिलके गया, दूसरा आवे, उसके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तो मुझे मिलते हैं ना। मैं उस समय अटेंटिव हो जाती हूँ कि मुझे फिर अपने ट्रैक पर आ जाना। तो खुद को समय दीजिए, अपने अंदर के आवाज को सुनिए, अपना दर्शन करिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। खुद खुद को देखेंगे तो खुद को करेक्ट कर सकेंगे, दूसरा करेक्शन देगा आपको बुरा लगेगा। आप 2 जवाब सामने देंगे कि तुम मेरी बात कर रहे, तुम कैसा है, इधर आओ मैं बताता हूं, आप 4 अवगुण उसके बता दें। इसलिए कहा कि जब खुद को समय देंगे तो खुद से जुड़ेंगे, और परमात्मा से जुड़ना केवल स्वार्थ से भगवान को याद नहीं कर, हे भगवान मेरा इतना काम हो जाए तो मैं कथा करा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा, वो चीज नहीं चाहिए। हाँ, भगवान से सौदा मत करिए ऐसा। व्यापारी धार्मिक होते हैं, हमने देखा है, वो दुकान जाएंगे तो भी मंदिर होके जाते, और दुकान बंद करके घर जाते तो भी मंदिर होके जाते, पर बात क्या करते हैं भगवान से। भाई दुकान जाते हैं तो मंदिर होके जाते हैं कि बहुत अच्छे ग्राहक आज देना, और बंद करके आते हैं रात को मंदिर होके आते हैं कि जो कुछ उल्टा सीधा किया माफ कर दे। अब ऐसा रोज मंदिर जाओ और रोज प्रार्थना करो, इससे थोड़ी कोई बात बनी। इसलिए सच्चाई और ज्ञान पूर्वक दिल से तो रिजल्ट क्या आएगी। जब स्व में आप स्थित होंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, आत्मा स्थिति में स्थित होंगे, तो आपके विचारों में एकाग्रता आएगी। क्योंकि स्व मैं बिंदु तो मन कॉन्सेंट्रेट होगा, समेट जाएगा, मैं स्वयं ही बिंदु हूं, ये सोचते ही आपका मन अंतर्मुखी बनेगा, मन समेटने लगेगा। तो आत्मा स्थिति में स्थित होने से विचारों में एकाग्रता आएगी, लेकिन परमात्मा की याद से जब मन परमात्मा से आप जोड़ेंगे तो विचारों में स्पष्टता क्लैरिटी आएगी, उलझन नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विचारों में स्पष्टता लगता है। क्योंकि सारे मूल सत्य हम जान लेंगे तो हमें कोई मूंझ नहीं रहेगी, हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। आपके विचारों में स्पष्टता, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रही। ये अलग बात है अनुभव की बात पूछना, और एक है कि खुद का विवेक नहीं चलता है और दूसरों के कहने पर चलते। इसलिए कहा है कि जो मूढ़मति है वो दूसरों से राय लेते, वरना व्यक्ति विवेक से चल सकता। शब्दों में जब आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, आपके विचारों में ईमानदारी ऑनेस्टी आएंगी। क्योंकि आत्मा स्वयं सत्य है, अविनाशी, शुद्ध और पवित्र है, तो मेरे विचारों में ईमानदारी आती जाएगी। लेकिन शब्दों में, मेरे शब्दों में प्रामाणिकता आएगी, ईमानदारी आएगी। लेकिन कई बार हम सत्य बोलते हैं लेकिन कड़वा बोलते हैं, इसलिए सत्य हमने कहा, कल्याणकारी बात कही, फिर भी उसको प्रिय नहीं लगेगी क्योंकि मेरे कहने का तरीका मधुर नहीं हो। परमात्मा से जब मन जोड़ेंगे तो उसका याद, उसका प्यार मन को भी मधुर बना देता है, तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपकी वाणी में अमृत आ जाएगा। इसलिए शब्दों में सत्यता और मधुरता दोनों की आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं कि मैं स्पष्ट कहता हूं, सीधा कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं तो प्रिय नहीं लगता। पर इसलिए प्रिय नहीं लगते हो कि आप विधि पूर्वक प्यार से नहीं कहते, मधुरता से नहीं कहते। अगर मैं आपके शुभ बात कहूं पर सबके बीच में कहूं, अच्छा नहीं लगेगा। तीखे शब्दों में कहूं तो अच्छा नहीं लगे। वही बात मैं प्यार से कहूं, मिठास से कहूं। कर्म में जब सोल कॉन्शियस आप बनेंगे, आप में संपूर्णता आती जाएंगी, आपके कर्म में परफेक्शन आएगा। हम चाहते हैं ना कि परफेक्ट काम करे, तो हमारे कर्मों में परफेक्शन आएगा। लेकिन गॉड कॉन्शियस बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्म में परफेक्शन आने के बाद भी अभिमान ना आ जाए, हमारे में निमित्त भाव रहे कि बनाने वाला तो वो है, मैं तो निमित्त मात्र। ज्ञान उसका है, शक्ति उसकी है, मैं तो उनके तरफ से निमित्त हूं। तो कितने भी आप महान बन जाएंगे लेकिन अभिमान नहीं आएगा, आप में नम्रता, निमित्त भाव, निर्माणता आप में आएगा। और समय के समय आपका सोल कॉन्शियस बनने से लाभदायक होगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव बनेगा, सफल बनेगा, फल देने वाला हो जाएगा। लेकिन जब आप गॉड कॉन्शियस बनकर सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो आपका टाइम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं ना सभी कि 2 मिनट दादी मिले, 1 मिनट दादी मिले, इतने वैल्यूएबल आपका टाइम और आप स्वयं बन जाएंगे। तो आप में आर्ट ऑफ बिजनेस आ जाएगा और आप मास्टर ऑफ ट्रेड बन जाएंगे। ओम शांति।